ओम शांति। जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाइए, आगे बहुत सारे सीट्स खाली हैं, सो पीछे से आगे आइए। और अभी हमारा बीच में है आदरणीय वरिष्ठ भ्राता राजयोगी ब्रह्म कुमार प्रेम सिंह भाई जी को, एक हाथ ताली से भाई जी को स्वागत करेंगे सभी। तो भाई जी, आप 50 साल से भी ऊपर ज्ञान में हैं और हमारा अति प्यारी हृदय पुष्पा दादी से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। ज्ञान लेते ही आप समर्पित रूप से बाबा की यज्ञ की सेवारत बन गई। आपको पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी प्राप्त हुआ है और गुजरात यूनिवर्सिटी से भी संस्कृत में गीता अलंकार से सुशोभित किया है। वर्तमान समय गुलबर्गा सब जोन का आप डायरेक्टर भी हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कई सेवा केंद्र का आप संचालन के रूप में निमित्त सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान समय सोशल सर्विस विंग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। तो आज का सेशन का टॉपिक है कुष्ठनुमा जीवन कैसे जिए। सो आज भाई जी से हम अनमोल महावाक्य सुनेंगे और हमारा बुद्धि रूपी जोली भी भर देंगे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। जो भी हम यहाँ बैठे हैं उनमें से कितने भाई बहने नाखुश है, जीवन में खुशी नहीं है, ऐसे हाथ उठाएंगे? नाखुश है कोई भी नहीं है? जब सब खुश हैं तो फिर क्लास कैसी कराएंगे? ऐसा हो कि आधे नाखुश आधे खुश हो तो भी कहा जाता है जो खुश है वो नाखुश को समझाओ, बाकी कोई जब मिलते हैं आपस में, जब स्वास्थ्य का आदान प्रदान होता है तो पूछा जाता है कैसे हैं आप, पहला प्रश्न होता है। अभी भी वो भाई पूछ रहे थे कैसे हैं, तो क्या कहेंगे? खुश हैं? आप यदि बोलेंगे कि मैं नाखुश हूं तो 10 प्रश्न पूछेगा वो। किसी को भी मैंने देखा है, पूछो तो पूछते हैं कोई भी आप कैसे हैं, तो बोले नहीं थोड़ा नाखुश। तो पूछे किसके किसके लिए नाखुश हैं, किससे नाखुश हैं, क्यों नाखुश हैं, सारे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। अच्छा है बोले कि हाँ हम खुश हैं, फिर आगे सवाल नहीं होगा। जीवन खुशी का तब रहता है जब हम हमारे जीवन को सच्चाई सफाई और सादगी से लेकर के चलते हैं, क्योंकि जीवन में सच्चाई नहीं होती है ना। तो कहा जाता है आज की दुनिया में तो सच मिरे ही सच, सच झूठ मिरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं, सब झूठ का बोलबाला है। अब जब यहाँ हम हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो हमारा जीवन सत्यता की ओर बढ़ता है। ऐसे भी लौकिक में लोग कहते हैं वी आर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, हम सत्य की खोज में हैं। जबकि हमें सत्य मिल गया तो सत्य मिलने के कारण से हमारे जीवन में खुशी आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सत्य एक होता है, झूठ अनेक होते हैं। तो इसीलिए एक तो सत्य परिचय चाहिए हमारा, दूसरा सफाई जीवन में चाहिए। जब तक सफाई नहीं होगी तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही दादी जानकी का ये स्लोगन है, सच्चाई सफाई और सादगी। सादगी भी देखेंगे, एक टाइम था ब्रह्म कुमारी यज्ञ में कि सिंपल लाइफ होती थी, बहुत सिंपल होती थी, बाबा भी कहता है देखो बच्चे कहाँ बैठे, विश्व के महाराजा बनने जा रहे हो पर बैठे कहाँ हो, तट पर पट पर बैठते हैं उस समय में। हाँ सो देखिए सोफा लगा पड़ा है। इसीलिए सादगी में एक प्रकार का अनोखा खुशी आनंद होता है। इसीलिए जीवन में ये तीनों को धारण करने के लिए ही बाबा आया हुआ है। बाबा को कहा भी जाता है सत्य है, और वो सत्य भी है और दूसरा कल्याणकारी भी है, तीसरा विश्व का सबसे सुंदर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। तो उसके उतना सुंदर कोई नहीं, यही कारण है कि आज करोड़ों भाई बहने अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। हाँ ये भी है जब हम समर्पित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में खुशी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है खुश रहो आबाद रहो, न भूलो न बिसरो न याद करो। तो ये भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य है कि हम खुश हैं। खुशी जैसी खुराक नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। आपको पता होगा खुराक किसे कहा जाता, खुराक किसको कहा जाता है, खुराक पता है? इन दिनों में कोई खुराक नहीं देता है हमको। हाँ यज्ञ में कभी कभी काजू की टोली मिल जाती है, कभी 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 बादाम की टोली मिलती है, परंतु खुराक उसको कहा जाता है जिसमें काजू बादाम पिस्ता खोपरे का टुकड़ा गुड़ थोड़ा सा ऐसे सारा मिला करके ऐसे उस जमाने में देते थे, कोई मिलता था हमारे पास। हम बचपन में थे, एक दादा थे उसके पास जो भी जाते थे तो वो ऐसे मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स दे देता था, तो उसको खुराक कहते हैं। तो खुराक से क्या होता है, हमारा हेल्थ अच्छा होता है ऐसा मानते हैं। आजकल तो सबके लिए कहा जाता है ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ, क्योंकि दुख अशांति जीवन में भरी हुई है। हर एक व्यक्ति एक न एक बीमारी से ग्रस्त है। अब बीमारी तो कलयुग का वरदान है। बाबा भी कहता है चलो यहाँ पर अच्छा ऑर्गेनिक शुद्ध अन्न नहीं मिलता है, और ये जो होते हैं ना लाल पीले हरे कैप्सूल्स, बाबा कहता है इसको ही फ्रूट समझ लो और खाओ और खुश रहो, क्योंकि खुशी हरेक के जीवन में आती है यहाँ संगम युग पर। बाहर में भी खुश लोग रहते हैं, ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं हमारे से ज़्यादा वो खुश हैं क्या। नहीं, उनकी खुशी टेम्पररी है, तात्पूर्तिक है, परमानेंट नहीं है। और हम जो जीवन जीते हैं दिखाई का नहीं होता है, ये ओरिजिनल होता है। खुशी बाहर नहीं होती है, खुशी अंदर होती है। जैसे हम देखते हैं ये जो देवता हैं, आप देखेंगे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक या विदेशों में भी होंगे, जहाँ कहीं भी ये मूर्ति होती है ना, मूर्तियाँ देवताओं की, सारी मूर्तियाँ आपको स्माइलिंग फेस में मिलेंगे, खुशनुमा चेहरे से मिलेंगे। एक भी देव की मूर्ति ऐसी नहीं होगी जिसमें क्रोध द्वेष आवेश झलकेगा उनके मुख से उनके आंखों से। ये भी है कि चेहरे से ज्यादा आंखें खुशी को प्रकट करती हैं। आंखें वो चीज है जो हमारे अंदर को प्रदर्शित करती है। इसीलिए बाबा कहता है एक तरफ तो बच्चे ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, और उस धोखे से मनुष्य नाखुश होता है, उसके जीवन में दुख छाता है। और इन्हीं आंखों से यदि हम इनमें, बाबा कहता है इनमें एक में आप सतयुग बसा लो, एक में शांति धाम बसा लो, एक में बाप दादा को बसा लो, एक में सतयुग बसा लो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आंखें स्माइलिंग होंगी, आंख भी स्माइल करती है। आप देखेंगे हमारे अंदर समझो कड़वाहट है, दुख है, दर्द है, तो वो आंखों से प्रकट जरूर हो जाएगा, आप चाहो या ना चाहो। इसीलिए भगवान कहता है बच्चे खुशी में खुश रहो, और खुशी मिलती भी है तब जबकि हमारे को एक पक्का निश्चय होना चाहिए कि हमें जो मिला है वो परमात्मा है, भगवान है, दाता है, दिव्य चक्षु का विधाता है, जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने वाला है। यदि ऐसी भावना अंदर में घर कर गई हो तो उसके जीवन में खुशी ही खुशी रहेगी। तो ऐसा एक जीवन जीने की कला, कल भी बाबा कह रहा था, बाबा हुनर सिखाता है, हुनर आर्ट ऑफ लाइफ, वो तो है आर्ट ऑफ लाइफ होता है, तो हम तो कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव, कैसे जीना चाहिए। वो कहेंगे जियो और जीने दो, हम कहते हैं नहीं, जियो और जीने की कला सिखाओ, जीने का हुनर सिखाओ। तो हुनर माना कला, आर्ट ऑफ लाइफ जो बाबा हमें सिखाते हैं वो वंडरफुल है। और उसके अनुसार आज बाबा कह रहा था, तुमको और तो कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ करना है तो सिर्फ बाप को फॉलो करना है, एक ही बात है। और हम जानते हैं वो भगवान है, पिता परमात्मा है, उसको फॉलो करना इतना सरल नहीं है। परंतु हम यदि अपने को बालक समझते हैं ना, तो बालक इधर उधर नहीं देखता है, उसके जेन में एक ही होता है, पापा आगे है तो उसके पीछे पीछे भागता है, उसकी मुग्धता उसको प्रश्नातीत कर देती है। तो ये एक विशेष हम अपने जीवन में देखते हैं कि यदि हम मुग्ध हैं, भोले हैं, ऐसे भी आप देखेंगे भगवान को भी भोलानाथ कहा जाता है। तो ये भोलापन होता है माना जहां पर हमारे जीवन में प्रश्न नहीं होते हैं, प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता के लिए चाहिए संतुष्टता, संतुष्टता के लिए चाहिए आत्मज्ञान कि हमको अब भगवान मिला तो सब कुछ मिला, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, ऐसे कहते हैं। और फिर कभी कहेंगे कि एक तू मिला तो ये आसमान धरती तो क्या आसमान भी हमारा हो जाता। तो ये भी एक खुशी को जाहिर करने वाली बात है, प्रकट करने वाली बात है कि कैसे वो ऊपर वाला हमको खुशी बरसा रहा है, खुश। तो वो खुशी अपने जीवन में चाहिए तो जरूरी है कि उसका संग हमारे को चाहिए। ऐसे बाबा कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे, तो कुसंग तो हम नहीं करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा महसूस होता है आजकल कि कहीं कुसंग तो नहीं, बल्कि बाबा से हट करके भी हम कोई संग में पड़ जाते हैं जो मानव संग होता है। परंतु सीधे ही बाबा कहता है मनुष्य मत माना ही आसुरी मत, और कभी हम आसुरी मत न समझ करके मनुष्य मत में फंस जाते हैं तो हमारे जीवन से खुशी गायब हो जाती। या दूसरी बात यह भी होती है कि अंतर्मुखता हमारे जीवन में होनी, इंट्रोवर्टनेस, जितनी अंतर्मुखता होगी, माना जैसे उस दिन बाबा मुरली में कह रहा था कि दूसरे की बात छोड़ो, अपनी सोचो, दूसरे को देखने से खुशी गायब होती है। और फिर एक क्यों लग जाती है, क्यों, क्या, कैसे, कब। तो ये बाबा कहते हैं जिसके जीवन में क्यों की क्यों है वो फिर नाखुश होगा ही होगा। उसे खुश करना, कभी कभी ऐसे भी कहते हैं उसको खुश करना ईश्वर को भी संभव नहीं, क्योंकि वो हर बात के पीछे क्यों लगा देता है ना, कैसे, कहाँ, कब। तो बाबा कहता है अभी तो मैं हूं इधर, तो कम से कम इन प्रश्नों से तो परे रहो, तभी कहेंगे प्रसन्न। आप देखेंगे मंदिरों में ऐसा होता है, हर एक के पीछे लगाते हैं प्रसन्न भाव, प्रसन्न भाव, प्रसन्न, क्योंकि एक प्रसन्नता है जो आंतरिक चीज है, अंदर से होती है, चाहे वो भोजन की हो, कपड़े की हो, जैसे कहते हैं बेसिक नीड्स हैं मनुष्य के जीवन के, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। और अब हम दो और जोड़ देते हैं रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ विद्या और औषधि, ये भी कंपलसरी है आजकल के जीवन में। कल होता था पढ़ो ना पढ़ो जीवन चल जाएगा, आज ऐसा नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। तो वो पढ़ाई चाहे पढ़ो या दूसरी। और आज बाबा कह रहे थे पढ़ाई करके करोगे क्या, ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन समर्पित करो तो खुशहाली होगी, जीवन में खुशी ही खुशी होगी, क्योंकि अब हमने अपनी जीवन की डोर क्या किया, उस ईश्वर के हाथ में दिया, बाबा के हाथ में दिया। तो वो लौकिक में लोग कहते हैं कठपुतली करे भी तो क्या करे, वो कहीं और उसकी डोर कहीं और। ऐसे ही हम कठपुतली तो है नहीं, हमारे अंदर अपनी समझ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए ऐसे बाबा है तो वो भी कहते हैं, ऐसे बाबा कहता है बच्चे खुशी की एक ही हट्टी है, अब कहाँ जाएंगे, इसके सिवाय और कोई जगह है ही नहीं। सब कहेगा आज आए न आए कल आएंगे बंधे सरकार कच्चे धागे में, ऐसे कहते हैं धागे में बंद करके चले आएंगे। क्योंकि बाहर की दुनिया में देखते हैं खुशी है नहीं किसी के भी चेहरे पर। कई बार हमको टोली देने का अवसर मिलता है तो जब हम टोली देते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं, सामने वाला व्यक्ति अब वो बीके भी है, बाहर वाले की तो बात अलग है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में मेहनत लगती है। मैं आपको बताऊं मुस्कुराहट लाने में मेहनत लगती, क्यों, क्योंकि वो हाथ टोली के लिए बढ़ा तो रहा है परंतु अंदर में उसके और कुछ चल रहा है। अंदर में यदि बाबा होगा, अंदर में यदि उस टोली के प्रति श्रद्धा होगी, प्यार होगा, और ये टोली मेरे जीवन को शक्कर जैसा बनाने वाली है या गुड़ जैसा बनाने वाली है, तो ऑटोमेटिकली उसका चेहरा खुशी से भरा होगा। तो ये भी मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूं कि सामने वाला व्यक्ति खुश होता है कि नहीं होता है हमारी मुस्कुराहट से, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो कैसे क्रोधी को भी, वो कहते हैं द स्माइलिंग विल डिजार्म योर एनिमी। स्माइलिंग जो है, मुस्कुराहट जो है, वो आपके दुश्मनों को भी निशस्त्र कर देगी, हरा देगी। परंतु वो जो हंसी है, खुश मुस्कुराहट है, वो एकदम प्लेन चाहिए, पवित्र चाहिए, साफ सुथरी चाहिए, कोई भी द्वेष असूया से भरी हुई नहीं चाहिए, ऐसी मुस्कुराहट हो। ये मुस्कुराहट लाने के लिए उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आती। हंस आप देंगे ऐसे ही, हंसना सहज है, परंतु बाबा ये कहता है ठहाके मार के भी हम खुशी जा, खुशी बताने के लिए ठहाके मार के हंसेंगे भी नहीं, क्योंकि मना है। हमें ऐसा सुनने को मिला कि मम्मा को कभी किसी ने ठहाके मार के हंसते हुए देखा नहीं है, उनके मंदस्मित भाव अवश्य होता है। तो ये भी हमारे जीवन में हम ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं तो ठहाके मार के हंसेंगे, खुशी प्रकट होगी, प्रस्तुत होगी, इसको हम नहीं मानते हैं। तो भाई बहनों, ये भी है जीवन में, जब हम ये समझ लेते हैं कि ये जीवन भगवान का दिया हुआ वरदान है, प्रभु उपहार है, तो इसके हर एक पल पर हम खुश रहेंगे, क्योंकि उसका दिया हुआ जीवन है। अब हम देखते हैं कि जहां प्यार होता है वहां खुशी होती है, और जहां द्वेष होता है न चाहते हुए भी चेहरे में गांठ आ जाती है, चेहरा अलग सा हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि कहा जाता है अंदर बाहर साफ होना। तो अब बाहर तो साफ हो जाते हैं जल के आधार पर, परंतु अंदर कैसे साफ होंगे, अंदर होंगे ज्ञान जल से, बाबा की याद से। हमारा बाबा कहता है वो भगवान का वरदान है, और वरदान तो जीवन में ऐसे ही मिल जाता है, क्योंकि ये घटनाएं भी होती रहती हैं जीवन में। बाबा भी जैसे आज कह रहा था, तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा करता है, गाली देता है, निंदा करता है, तो माना अपमान यो समो योगी ऐसे कहा जाता है, कितना अच्छा। हाँ, मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे पास वर्तमान में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है, और यह ज्ञान पिछले वर्षों में भी था। जैसे शास्त्रों की बात है या गीता की बात है, परंतु आप देखेंगे गीता में जो ज्ञान बाबा कहता है, आटे में लून की मिसल है तो सही। और कोई ऐसी, हम ये नहीं कहते हैं, जब मैं ज्ञान में आया तब मेरी समझ में नहीं आता था ज्ञान क्या चीज है, क्योंकि हम संस्कृत में खुश थे और संस्कृत के ऊपर बड़ा अथॉरिटी थी। तो जब वो देते थे ना ज्ञान, वो टीचर हमको कोर्स देती थी, हम कहते ये हमको समझ में नहीं आता है, हमको योग सिखाओ, परंतु वो संस्कृत के विरुद्ध है, ऐसा बाहर भी सुनते थे, ये ब्रह्मा कुमारी इसमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। और वो भी हुआ कि जिस दिन हम बाहर आए, वहां स्टॉल पुस्तकों का लगा था, उसमें श्री सत्य श्रीमद भगवद गीता कन्नड़ में लिखी हुई थी, उसमें देखा कि एक भी संस्कृत का श्लोक नहीं था। तो हमने पूछा इसमें श्लोक नहीं है, तो कहा हमको नहीं आता है। चलो आपको नहीं आता है, जिसने ये पुस्तक लिखी उसको तो आता होगा, कहता उसको भी नहीं आता है, छोड़ दिए। पर धीरे धीरे ये बात समझ में आने लग गई कि बाबा का ज्ञान कहाँ न कहाँ आटे में लून की मिसल गीता के अंदर है। और जहां तक खुशी की बात है, तो ये जो योग है, योग को एक ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों को, चित्त की वृत्ति आज कैसी है, चित्त की वृत्ति माना आत्मा का प्रोफेशन, आत्मा के गुण। अब आत्मा के गुण क्या है, दुख अशांति रोग द्वेष असूया, ये आज की दुनिया के आत्मा के गुण है। अब इसका निरोध करना, किसी भी बात का हम विरोध नहीं कर सकते, विरोध करना, विरोध करने से कोई खुशी नहीं मिलती है, फिर क्या करें। तो बाबा कहता है सगुणत्व सगुणता उसमें भरते जाएंगे, या कहो दैवी गुण भरते जाएंगे। जितने हम दैवी गुण भरते जाएंगे, वो धीरे 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 दुर्गुण हमारे नीचे, वो कहते हैं ना एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र तले में धंस जाएंगे, जैसे द्वारिका धंस गई ऐसे धंस जाएंगे, और वो फिर जा करके द्वापर के बाद निकलेंगे। चक्र तो है ना, बाबा ये भी कहते हैं जब तुम आत्मा हो और ये जानते हो कि आत्मा के अंदर संस्कार भी हैं, संस्कार कोई अलग नहीं है, तो आत्मा के अंदर जब आत्मा अविनाशी है तो संस्कार भी अविनाशी होंगे। तो अब जो हम कहते हैं हमारे संस्कार सुसंस्कार होते हैं, पर तो कुसंस्कार कहाँ जाते हैं, वो नीचे दब जाते हैं, वो दब जाते हैं। जैसे कोई को कहते हैं नहीं ऐक्य हो गया, तो वो जैसे ऐक्य हो जाते हैं, कुसंस्कार या दुर्गुण या बुरी आदतें सारे दब जाती हैं। जब उनको मौका मिलता है द्वापर में, तो फिर वो सर उठाते हैं, धीरे 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 छा जाते हैं सबके ऊपर। तो ऐसा हम अनुभव करना चाहिए जीवन में, ये जो ज्ञान है दिया हुआ वहां वहां, जैसे बौद्ध, जैसे हम यहाँ पर यम नियम कहते हैं, खुशी होती है सुन करके कि ये यम हमारे जीवन में होना चाहिए, अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते तुम हिंसा डबल अहिंसक हो, तो जितने जितने हम डबल अहिंसक बनते जाएंगे उतना हमारे जीवन में खुशी आती जाएगी, जीवन खुशनुमा होगा। ठीक है, तो ये अहिंसक जीवन, बाबा कहते हैं जैसे उसमें एक आद्योपांत दुख ही दुख है विकारों में, तो वो जीवन से हटते जाते हैं तो खुशी आती जाती है। वही होता है जो देवताओं को कहा जाता है कि ये संपूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, तो संपूर्ण निर्विकारी का अर्थ ही होता है कि उनका जीवन खुशी से भरा हुआ है और इतनी खुशी है कि वो दूसरे को खुशी बांट सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं खुश रहो और खुशी को बांटो। दादी गुलजार कई बार कहती थी कि भले शरीर छोड़ दो पर खुशी न छोड़ो। तो वो तो बता तो दिया, अब शरीर छोड़ दो और खुशी तब हो सकता है जबकि गीता का अंतिम वाक्य ये है नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। पहले कहा गया कि यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो एक काम करो, ये काम क्रोध लोभ ये तीन को छोड़ो, तस्मा देता त्रय छोड़ो, कोई ने नहीं छोड़ा तो दुख बढ़ता आया। अब फिर वो कहता है लास्ट में कि भाई ये नहीं बोला उसने कि मैं काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, पर वो कहता है मैंने मोह छोड़ा। तो हमारे जीवन में भी हम ये चेक करेंगे कि हम मोह से कहां तक ऊपर उठ पाए हैं, निर्मोही कहां तक बने हैं। निर्मोही बनना इतना सरल नहीं है। आप काम विकार को छोड़ देंगे, क्रोध को भी कंट्रोल कर लेंगे, लोभ को भी दबा देंगे, परंतु मोह को कहा जाता है, जैसे हिंदी में वहां कहा जाता है मोह कलिलम, हिंदी में बाबा कहते हैं दलदल में फंस जाते हो, जितना उठना चाहते हो उतना और अंदर धंसते जाते हैं। तो हम ज्ञानी हैं, हमारे को समझ है, फिर भी हम अंधे हैं मोह के। उसको कहा ही जाता है मोहांध, मोह में अंधा है। यदि हम जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो मोह से परे जीवन को बनाएंगे। और मोह होता कि मोह बोलते ही ऐसे लगता है ये पति पत्नी बच्चे मामे काके से मोह निर्मोही बनना, बन जाएंगे, परंतु कई बार हमें हमारे ही संस्कारों से मोह हो जाता है। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे किसी ने हंसी में कहा कि सतयुग में चाय नहीं मिलती है तो क्या करो, घर में कभी नहीं पिएंगे, पर हमारे मधुबन में ना सवेरे 3:30 बजे ही चाय के लिए ठहर जाते हैं। हम वो कहते हैं वहां नहीं मिलती है ना, चलो यहाँ जितना मिलती है उतने पी लो। ऐसे ही हमारे बुरे संस्कारों को भी हम छोड़ना चाहते हैं। और ये दलील ये उदाहरण देते हैं कि छूटते नहीं हैं। तो हमारे इसीलिए कहा जाता है कि संग तारे। तो ये संग किनका है? हमारे ही पूर्व विचारों का, कल के विचारों का। इसका संग छोड़ने की पूरी पूरी मेहनत हमको करनी पड़ती है। मेरी बात आप समझते होंगे भाषा के कारण से भी। तो ये मोह है ना, ये जल्दी नहीं। इसीलिए बाबा कहता है कि देह के संबंध, देह के पदार्थ, इनसे आपको छूटना है। आप देह से कैसे छूटेंगे? देह ऐसे कहा जाता है ये काम है, ये क्रोध है, ये रजोगुण समुद्भव है। रजोगुण का तात्पर्य है देह। देह रजस से पैदा होता है तो ये रजोगुण है। तो वो कहता है कि रजोगुण समुद्भव है। तो इसीलिए बाबा बार बार ये कहता है कि देह से भी आप परे ऊपर उठो। देह से कैसे ऊपर उठेंगे? तो देह के संस्कार हैं। हालांकि ये हाथ, ये जिह्वा, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये हैं मेरे शरीर के अंग हैं, परंतु इनको हमने छुट्टी दी है देखने की, सुनने की, सूंघने की, खाने की, स्पर्श करने की छुट्टी दे रखी है। अब इनको वापस लेना, जैसे इनको कहीं इनको स्वतंत्र किया हुआ है, अब उनकी स्वतंत्रता को छीनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मेरी बात समझते होंगे, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कई बार हम असंभव ही समझते हैं। तो कई बार हम एक तरफ कहते हैं क्या प्यारा, काम प्यारा, काम माना कार्य व्यवहार, यहां पर व्यवहार लेंगे। कोई अच्छा काम करता है ना, घर में खूब काम करता है तो कहते ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है। ऐसे ही काम प्यारा, क्या क्या प्यारा काम प्यारा, तो कहते हैं क्या प्यारी क्या प्यारी, कोई बोलेंगे क्या, क्या प्यारी नींद, प्यारी नींद प्यारी होती है, क्योंकि ये भी खींचती है, क्योंकि हमने इसको छुट्टी दे रखी है, सो जाओ सो जाओ। हम भी कहते हैं, हमारे संबंधी भी कहते हैं, ठंडी है इतना 3 बजे 3:30 बजे उठ के क्या करोगे, सो जाओ। परंतु ये हमारे जीवन में खुशी के ऊपर पर्दा डालने वाले हैं। जितना हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो क्या होता है, प्राकृतिक सुख हमको खुशी देता है। प्राकृतिक सुख जैसे बाहर हवाएं हैं, प्रकृति है, तो ये भी हमको सुख देती है, तो हमारे जीवन में खुशी। जैसे सूर्योदय से पहले कहा जाता है ये सत्वगुण ब्राह्मी मुहूर्त है, तो ब्राह्मी खुशी जीवन के लिए ब्राह्मी मुहूर्त का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। और बाबा ने यही कारण था कि बच्चे तुम ब्राह्मी मुहूर्त में उठो, और बाबा उठा देता है। एक बार ये आदत पड़ गई सवेरे ब्राह्मी मुहूर्त में उठने की तो आप सो नहीं पाएंगे, पर आदत पड़नी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है आदत बुरी बला है, डालो तो डालो नहीं तो छुट्टी नहीं होती है, आदत छूटती नहीं है। इसीलिए ये जो आदतें हैं मनुष्यों की वो घातक हैं। कोई भी आदत होगी, अच्छी आदत होती है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो छूटती नहीं। जैसे सवेरे उठने की आदत है, और हम लोगों को ये भी आदत पड़ी हुई है सवेरे सवेरे बाबा की मुरली सुने, और ये अद्भुत ज्ञान सारे विश्व में और कहीं नहीं मिलता है। मिलता भी होगा जैसे कहा वहां वहां आटे में लून की मिसल है, परंतु वो अप्लाई नहीं होता है। ज्ञान है, पर ज्ञान धारण करने की जो शक्ति चाहिए ना, वो व्यक्ति नहीं दे सकता है। और हमारे स्कूल में जो मास्टर होते हैं वो भी कहते हैं बी गुड डू गुड, अच्छा करो अच्छा बनो, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु समझ में नहीं आता है। जैसे समझिए, एक उदाहरण मैं दूं आपको कि मास्टर जी ने इल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इसके ऊपर क्लास कराई 40 मिनट्स, तंबाकू से क्या क्या हानि है। और जैसे ही क्लास पूरी हुई वो लड़के को बुला के कहता है जा रहे एक सिगरेट का डब्बा लेके आ, क्योंकि बात पूरी हो गई, अच्छी सुनाई, अच्छे पर पानी डाल दिया, तो बात खत्म हो गई। अब मुझे जो पहले सबसे अच्छा लगा ब्रह्म कुमारी में वो ये कि यहां पर चल करके ज्ञान देते हैं, माना ज्ञान सुना धारण किया फिर ज्ञान सुनाते, तो ये एक प्रक्रिया सिवाय यहां हमें और कहीं नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि बाहर की दुनिया में क्रोध के ऊपर, इवन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी घंटों कोई क्लास देता है, परंतु मैंने देखा है जो टाइम मैनेजमेंट पे क्लास देता है वो कभी टाइम पर काम नहीं करता, तो उसके जीवन में खुशी कहां से आएगी। पॉइंट बाबा कहता है बच्चे एक सेकंड का भी ड्रामा में फर्क नहीं हो सकता है, फर्क नहीं हो सकता है, तो वो टाइम टू टाइम होगा कार्य, तो उसको खुशी होगी, नहीं तो पश्चाताप होगा। तो और दूसरी बात ये भी होती है कि जो ज्ञान है उसको कहा जाता है ज्ञानमेव पराशक्ति, ज्ञान एक परम शक्ति है। अब वो कौन सा ज्ञान है, भौतिक ज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई शक्ति उसमें विशेष प्राप्त नहीं होती, शक्ति के लिए और धन का प्रयोग करते हैं। अब यहां बाबा कहता है बच्चे खुट्टी कौड़ी नहीं चाहिए, जैसे तुम्हारी मम्मा थी तो मम्मा तो फाइनेंशियली बैंकरप्ट थी, उनके पिता का जो बहुत बड़ा बिजनेस था वो कुछ नहीं बचा था, तो वो कुछ लाई नहीं थी एक ऐसा, फिर भी वो जगत अम्बा बन गई। आधार क्या हुआ कि जो समझ मिली ईश्वर से उसे उसने अपने जीवन में धारण किया और वो धारणा उसके जीवन को खुशनुमा बना दी। अब यही बात है हमारे ऊपर लागू होती है कि हमारा जीवन यदि खुशी से भरपूर रहे तो हम ये मेहनत करेंगे कि जैसे बाबा कह रहा है, बच्चे लोग तुम जब बोलते हो तुम्हारे ज्ञान को तुम्हारे व्यवहार को लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा तो है, पर आपने इस अच्छे से क्या अच्छा लिया? अच्छा है, इससे क्या प्रेरणा ली? कुछ अच्छा चलने की प्रेरणा ली तो हमारा जीवन सफल हो गया। और फिर हम ये भी कहते हैं ज्ञान में कि धन कमाइए, बुरी बात नहीं है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे बाबा भी कहते हैं बच्चे धन के सिवाय सुख के साधन मिल नहीं सकते। और सतयुग में क्या था? अकिंचर धन था, अकिंचर माना एबंडेंट ऑफ, उसमें अमाउंट हमारे पास होता है और वहां कोई सिक्के ऐसे वैसे कागज के नोट नहीं चलते हैं बल्कि सोने की अशर्फियां होती हैं। पर वो भी लेकर के क्या करेंगे, क्या करेंगे जबकि सारी संपन्नता उनके पास है। तो इसीलिए संपन्नता हमारे जीवन का खुशी बनने का आधार है जरूर, परंतु उसमें भी निर्लोभीपन होना चाहिए। तो मैं कह रहा था मोह के बारे में, तो ये मोह को जितना हम इसको समझ पाएंगे, इसके एक एक लेयर को आप निकाल करके अनुभव करेंगे और उसके लिए क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता कि एक दिन में एक पेज आप अव्यक्त मुरली का पढ़िए, साकार मुरली का पढ़िए। साकार मुरली नहीं मिलती है तो अव्यक्त वाणी की पुस्तकें हमारे पास हैं यहाँ स्टोर में, तो एक पेज पढ़िए। पढ़ने की आदत होनी चाहिए यदि हमको अपने जीवन को खुशहाली से भरना है, खुशनुमा जीवन जीना है। तो क्या चाहिए? ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन चाहिए, रिगरस प्रैक्टिस भी चाहिए, अध्ययन भी चाहिए। क्योंकि अब समझिए, कल कोई कह रहे थे मुरली सुनी, सुनने के बाद बाहर गए, कोई आपसे पूछ लिया क्या टाइटल था मुरली का आज? टाइटल क्या था? सर खुजाएंगे, क्योंकि याद नहीं रहता है। और होता भी ऐसे है, ये कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, दादी जानकी कहती थी मैं 10-12 बार मुरली पढ़ ली, और यही कारण था कि उनकी क्लास सिर्फ मुरली के पॉइंट्स होते थे और कुछ नहीं होता था, उधर इधर की बातें बिल्कुल भी नहीं होती थी। कारण था ना अध्ययन। तो इसीलिए कहा जाता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमोदितव्यम। स्वाध्याय और बोलने से, प्रवचन करने से कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए। मोस्ट भी कितना भी एक्टिव रहेंगे आप और अच्छा है। इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी, क्योंकि गीता में और एक तरफ कहा गया है कि ये जो विकार है इनको आप जीत सकते हो। उसके लिए दो तत्व हैं, वैराग्य, वैराग्य इसको कहते हैं अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये जो धारणा होनी चाहिए उसके लिए एक तो वैराग्य चाहिए, दूसरा अभ्यास। कहते हैं अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास के आधार पर जड़ बुद्धि भी ज्ञानी बन सकता है, पर अभ्यास चाहिए। इसीलिए कहते हैं अभ्यास का सबसे अच्छा समय है ब्राह्मी मुहूर्त, ब्राह्मी मुहूर्त सवेरे का समय। तो जितना उसको उपयोग करेंगे ना सवेरे के समय को, हम पहले रात के 2 बजे तक पढ़ते थे, 3 बजे तक पढ़ते थे, पढ़ाई लौकिक पढ़ाई, पर वो ध्यान में नहीं आती थी। फिर कहते थे कितना पढ़ रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ज्ञान में आए और 3:30-4 बजे उठने की आदत पड़ गई तो हम पढ़ते थे, लोग कहते थे ये फेल हो जाएगा देखना आप ग्रेजुएशन में। हम कहते थे आप देखिए, उनको क्या पता कि ये सवेरे पढ़ते हैं। जब रिजल्ट आई तो बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी आई। तो कहते कैसे आई? उन दिनों में कॉपी की बात नहीं थी, अभ्यास से। और वो ब्राह्मी मुहूर्त के अभ्यास से भी। और एक बात, दूसरी बात, मुरली पढ़ो पढ़ो नहीं, मुरली समझ के पढ़ो। खुशनुमा जीवन चाहिए तो क्या करो, मुरली। अब आपका मतलब है समझ के क्या होता है, तो मुझे मेरे अध्यापक ने सिखाया पहले कि रीड वन लाइन, अंडरस्टैंड इट, देन गो अहेड। एक लाइन पढ़ो, उसको समझो, फिर आगे जाओ। मैं कहा एक लाइन पढ़ेंगे तो पूरा साल एक पुस्तक में ही होगा, तो कहा देन ओके, रीड वन स्टैंजा, एक पैराग्राफ पढ़ो और समझो, फिर आगे जाओ। ऐसे ही मुरली का भी चार लाइन पढ़ो, समझ में आया कि नहीं आया अपने आप से पूछो, फिर आगे जाओ। तो क्या होगा, अंदर जो अज्ञान की गांठे हैं ना, वो खुलती जाएंगे। समझने से जाती है, सुनने से नहीं। सुना तो द्वापर कलयुग में बहुत है ना, जहां भी गुरुओं का प्रवचन होता है वहां हम जाते हैं ना सुनने को, लौकिक में जाते हैं ना। इधर वैष्णव लोग चातुर्मास करते हैं, हमारे कर्नाटक तरफ श्रावण मास करते हैं, सारा महीना सुनते रहते हैं। फिर वही बात होती है, राम को सीता क्या होती है, क्योंकि सिर्फ सुना है ना। तो अब कभी कभी ऐसे भी होता है, सुनते सुनते हम सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं, तो भी लगता है हम सुन, मेरे अनुभव की बात, लगता है मैं सुन रहा हूं पर सुनते कुछ भी नहीं, आंखें ऊपर हो गई। तो इसीलिए कई बार कोई कोई कहते सुनो मगर कान खोल के सुनो, हम कहते कान को दरवाजा तो है नहीं, है ना, तो दरवाजा तो आंख को है, आंख खोल के सुनो, आंख बंद करके नहीं सुनो। समझ में आ रहा है सुन रहा रहे नहीं, बाबा कहते हैं सुनो भी समझो भी, लिसन एंड अंडरस्टैंड। जब तक अंडरस्टैंड नहीं होता है तब तक कोई फायदा नहीं हमारे सुनने का पढ़ने का। पढ़ो, तो इसीलिए मुरली भी पढ़ेंगे, क्योंकि मुरली को कहा जाता है इट इज एलिक्सिर, मुरली अमृत है, तो अमृत से अमर बनते हैं ना, और जो अमर बनता है उसको नाखुशी दुख अशांति की बात ही नहीं होती है, उसके जीवन में खुशी ही खुशी होती है। तो इसीलिए जितनी हमको खुशी चाहिए उसका एक ही आधार है, क्या है, सुनो पढ़ो और समझो, फिर आगे बढ़ो। जब तक समझ में नहीं आया, जैसे समझिए ड्रामा है, जैसे आज बाबा दो बातें कर रहा था, एक तो तीव्र पुरुषार्थी और एक अलवेलेपन का, दोनों का लाइन एक ही होता है, हो जाएगा। हमारी दादी जानकी कहती थी वंडरफुल बाबा, क्या बड़ी बात है, हो जाएगा। और हम भी समझते हैं कोई कार्य होता है, हाथ में लेते हैं ये कार्य है, ये फंक्शन करना है, तो दिल में होता है हो जाएगा, बाबा बैठा है। परंतु बाबा बैठा तो है, हमें पश्चाताप से बचना है तो हमारे भी हाथ पैर चलने चाहिए, हमको भी फिजिकल मेहनत करनी चाहिए। जितनी फिजिकल मेहनत करेंगे उतनी सक्सेस हमारे जीवन में होगी और खुशी होगी कि हम पास हो गए। पास होने से जो खुशी होती है ना, वही खुशी यहां भी हम अनुभव करते हैं। तो इसीलिए एक बात ध्यान पे जरूर होनी चाहिए, जब तक समझ में नहीं आया तब तक आगे मत बढ़िए, वहीं रुकिए, नहीं सुनते चलो सुनते चलो। वो कई बार वो लोग भी कहते हैं स्वाति नक्षत्र का पानी, स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंद सींप में कब गिरेगी, कहां मोती बनेगी, कोई नहीं जानता, इसीलिए सुनते चलो। हम भी वही कह रहे हैं, सुनते तो चलो पर समझते भी चलो। तो अभी जो हम बोल रहे हैं ये कितना आप समझते हैं आपको ही पता है। इसीलिए मुरली हमारी है, हमारे बाबा की है, और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है, हमारे जीवन में खुशी लाने वाली है। हम दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो हम खुश रहे ना, हम दुखी हो करके किसी को सुख दे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे व्यवहार से, हमारे चलन से, हमारे चेहरे से उसको महसूस हो कि ये व्यक्ति खुश है, और वो खुशी बांटता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब हमारे पास भंडार भर्ती होगा ना तभी बांटेंगे, नहीं तो नहीं बांट सकते, नहीं तो हम हमारे खाली घड़े को भरने में टाइम जाएगा। इसीलिए खुश हो जाओ, खुश रहो, खुशी बांटो। कल भी ये जो मुरली आई, कल बाबा 15 तारीख को जो बोला खुशी रहो और खुशी बांटो, बांटने से खुशी और बढ़ती है। क्योंकि ये कहा जाता है अपूर्व कोष, ये एक अद्भुत भंडार है खुशी का, इसको बांटते रहो तो बढ़ता जाएगा, नहीं बांटो तो कम होता जाएगा। इसीलिए एक बात लास्ट में, मुरली पढ़ो रोज, जितना पढ़ेंगे उतना मजा आएगा, उतनी समझ होगी, एक बात। दूसरी बात, जब तक नहीं समझ में आया ऐसे ही पन्ने नहीं पलटिए, समझ करके आगे बढ़िए, तो वो धारणा होगी, समझ होगी। तीसरी बात, पढ़ना है और अभ्यास करना है तो सवेरे करो, अमृत वेले करो, बाद में लौकिक शुरू हो जाता है, और लौकिक को छोड़ना नहीं है, लौकिक को साथ लेके चलना है, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन का ज्ञान है। इसीलिए चौथी बात, जो समझ में आया उसे दूसरे को बांटो, तो ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ोतरी होगी। पांचवी बात, जितना भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं अंतर्मुख होकर के, उतना करते रहना चाहिए, क्योंकि बाहर में दुनिया, सब बोलते हैं दुनिया बड़ी गंदी है, हमारा समाज बिगड़ा हुआ है। मेरे को लगता है हमारा समाज, जब हम बोलते हैं शायद अपने को भूल जाते हैं उसमें। पहले तो वो लोग कहते हैं ना, भाई जब तुम ऐसा करते हो तो 3 उंगली तुम्हारे तरफ होती हैं। इसीलिए द चेंज इन द सेल्फ विल ब्रिंग द चेंज इन द वर्ल्ड, खुद को परिवर्तन करो तो जग परिवर्तन होगा। तो ये भी ध्यान में रहना चाहिए, यदि खुशमय संसार बनाना है, आनंदमय संसार बनाना है, तो उसका एक ही आधार है, हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाए। लास्ट में एक बात और समझा दो, ये जो ज्ञान में एक वाक्य है, इच्छा मात्रम अविद्या। जब तक कोई भी लौकिक, भौतिक, शारीरिक, दैहिक इच्छा होगी, तो कभी हम जीवन में खुश नहीं बन सकेंगे, हमारा जीवन कभी खुशी से भरा हुआ नहीं होगा। तो क्या है, क्या करें फिर? तो हमारी तो इच्छा होनी चाहिए अच्छा बनने की। बाबा भी कहता है इच्छा होगी तो अच्छा नहीं बन सकेंगे, पर हमारी इच्छा अच्छा बनने की है ना, अच्छा बनेंगे तो एक तुम बोलो न बोलो, परंतु तुम्हारे द्वारा संकल्पों का वाइब्रेशन फैलता है दुनिया में। इसीलिए ये जो वाइब्रेशन की बात है, मैं अंदर में बुरा हूं और ये कहूं कि मेरी बुराई कौन देखता है, तो मैंने देखा है कि बुराई कोई देखता नहीं है, बुराई ऐसे प्रसरित होती है, वाइब्रेट होती है। आप मत बोलिए कुछ भी, परंतु आपके माध्यम से बुराई फैलती है। यदि अंदर अच्छाई होगी, अंदर खुशी होगी, तो बाहर भी खुशी वाइब्रेट होगी, वो वायुमंडल को खुश बनाएगी, और खुश वायुमंडल ऑटोमेटिकली एक प्रकार का आनंद, सेटिस्फैक्शन जिसको हम बोलते हैं, क्या इच्छा रहित जीवन, ऐसे कोई भी इच्छा के रहित होता नहीं है। जैसे कहा कि उसने नष्टो मोहासु, नहीं उसने कहा कि तुम कार्य करते च कर्मण्येव अधिकारस्ते, सब लोग बोलते हैं काम करो परंतु उसके उत्तर की इच्छा मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम सब इस ज्ञान में चल इसीलिए रहे हैं कि बाबा ने हमारे सामने ये लक्ष्मी नारायण बनने का ध्येय रखा, यदि ये नहीं रखा होता बाबा तो हम नहीं चलते थे। हर एक को किसको भी पूछे हम क्या बनना है आए हो, लक्ष्मी नारायण बनने, किसी को पूछे राम सीता बनना है, बोले नहीं बनना है। तो एक दिन हम अव्यक्त बाप दादा के सामने थे तो एक भाई ने पूछा, बाबा आप तो फर्स्ट नंबर में आएंगे, हम अपने जीवन का टारगेट सेकंड नंबर में रखे? कह रहे नहीं, हरगिज मत रखो, फर्स्ट का ही रखो। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर में रखोगे तो थर्ड फोर्थ में आ जाओगे, फर्स्ट का ही रखो। तो ऐसे हमारे जीवन को यदि फर्स्ट में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको देख करके सबका जीवन सुखाली से भरेगा, खुशी से भरेगा। ओम शांति। वो बहन जी साहब धन्यवाद।
कितने प्रभु का मिला सहारा।